100% ये गोल्ड मेडल होता अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती और प्रॉपर सोल याद मिलती।
मीडिया में चल रहा है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मैच दें और मैं ताकि छोड़ दूं।
न्यू आईसीसी रेजीम They are trying to sideline the BCCI.
तो आधे रास्ते तक आसिफ इकबाल गए तो उनके पता नहीं माइंड में क्या आया कि मुझे उन्होंने जल्दी से आवाज दी कि रकीब कम है।
पैरालंपिक्स में हैदर अली का कांसी का तमगा, शाहिद आफरीदी बावकार रिटायरमेंट के ख्वाहिशमंद, लेकिन क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है? BCCI बमुकाबला ICC और टॉस से पहले आसिफ इकबाल ने अब्दुल रकीब से क्या कहा? खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तान रियो डी जेनेरो में होने वाले ओलंपिक्स मुकाबलों में बराए नाम शिरकत करके कोई काबिले जिक्र कारकर्दगी ना दिखा सका था, लेकिन रियो डी जेनेरो में ही होने वाले पैरालंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने लॉन्ग जंप में कांसी का तमगा जीत लिया। ये वही हैदर अली हैं जिन्होंने 8 साल पहले बीजिंग के पैरालंपिक्स मुकाबलों में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी और चांदी का तमगा जीता था। मैंने रियो डी जेनेरो फोन करके हैदर अली से बात की और पूछा कि 8 साल पहले चांदी का तमगा और अब कांसी का, तो क्या मुकाबला सख्त हो गया है या आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई?
पहले कंपटीशन कुछ और था, अभी कंपटीशन भी बहुत टफ हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारी जो ट्रेनिंग में भी मसाइल है, जो जाहिर बात है कि उधर पाकिस्तान में हमारी जो प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप वगैरह कुछ इस तरह का थोड़ा इशू है और ग्राउंड नहीं है और कुछ हुकूमत के फंड्स नहीं है कि ताकि प्रॉपर कैंप लगाया जा सके और हमें ट्रेनिंग दी जाए। कोई प्रॉपर फंड नहीं है जिसकी वजह से वो लंबे कैंप नहीं लगा सकते, शॉर्ट कैंप लगाते हैं। अभी भी 10 दिन का कैंप लगा था उधर, हम 10 दिन मैंने सिर्फ ट्रेनिंग की थी उधर PSD में और इधर आ गया था। 100% ये गोल्ड मेडल होता अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती और प्रॉपर सोल याद मिलती।
हैदर अली से मेरा आखिरी सवाल था कि आपको बीजिंग में चांदी का तमगा जीतने पर हुकूमत की तरफ से कोई इनाम मिला या नहीं, और पाकिस्तान में पैरालंपिक्स एथलीट्स की कितनी पजीराई होती है?
जब 2008 में मैं सिल्वर मेडल हुआ था वो पाकिस्तान हिस्ट्री का एथलेटिक्स नॉर्मल और पैरालंपिक का पहला मेडल था और सिल्वर मेडल के साथ मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था क्योंकि मेरा और जो लड़का गोल्ड हुआ था हमारा सेम जंप था तो दोनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल था, बराबर था। तो हुकूमत की तरफ से मुझे 1,00,000 रुपया मिला था, कुछ भी नहीं, कोई पजीराई नहीं, कोई और तरह के किसी तरह के वसाइल नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई बेनिफिट, कोई कुछ नहीं मिला, सिर्फ 1,00,000 रुपया उन्होंने दिया था बस।
शाहिद आफरीदी एक मरतबा फिर शह सुर्खियों में हैं। इस बार ये शह सुर्खियां उनके बैन अलाक्वामी करियर के अख्तिताम से मुतालिक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगरचे वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी जराए इब्लाग के मुताबिक शाहिद आफरीदी को 16वें खिलाड़ी के तौर पर इस सीरीज में खिलाकर बैन अलाक्वामी क्रिकेट से रुख्सत करने की तैयारियां हो रही हैं। शाहिद आफरीदी ने अगरचे इस बात की तस्दीक की है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई भी फैसला करने से मुतालिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक से मुसलसल राबते में हैं, लेकिन उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि ज़राए इब्लाग ने ये कैसे कह दिया कि वो खुद अपने अलविदाई मैच के लिए क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त कर रहे हैं।
मीडिया में चल रहा है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मैच दें और मैं ताकि छोड़ दूँ, ये तासुर बिल्कुल गलत है। ना क्रिकेट बोर्ड मुझे प्रेशराइज कर रहा है, ना मैं क्रिकेट बोर्ड को प्रेशराइज कर रहा हूँ।
शाहिद आफरीदी से पूछा गया कि अपने करियर को खत्म करने के सिलसिले में आपके जहन में क्या है?
मैं उस तरह करूंगा जिसमें क्रिकेट बोर्ड की भी इज्जत हो और मेरी भी इज्जत। हम बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो इज्जत के साथ खुदाफिस करते हैं क्रिकेट टीम को, बड़ा कम होता है हमारे यहाँ, मैंने देखा नहीं है ये चीज़। तो मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स की एक नई रिवायत कायम हो, उसमें प्लेयर को भी झुकना चाहिए और टीम और बोर्ड को भी झुकना चाहिए।
दुनिया के ताकतवर तरीन और अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड BCCI के बारे में मशहूर है कि दुनिया के दीगर तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जो कुछ कहते हैं वो उनसे अलग राह अपनाता है, और आजकल तो वो अपने ही एक साबिक सदर शशांक मनोहर के खिलाफ खुलकर बोल रहा है जो इस वक्त ICC के चेयरमैन हैं। दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
गुज़िश्ता हफ्ते ICC को BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने 2 टेस्ट सिस्टम के मुद्दे पर झुकना पड़ा। हैरानी की बात तो ये है कि कभी खुद BCCI ऐसा चाहती थी तो अब क्यों वो ICC के इस फैसले को मानने से मना कर रही है? जाने माने क्रिकेट सहाफी प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
BCCI को अगर की खिलाफत भी करनी थी तो पैसे को लेके नहीं करते क्योंकि टेस्ट क्रिकेट लोग देख नहीं रहे हैं। तो अगर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जाए टॉप टीम्स की, तो टू टायर हो जाए, जो फिर नीचे लेवल की टीमें हैं वो आपस में खेल के फिर जो टॉप पे पहुंचे वो आके टॉप टायर का बॉटम टीम को रिप्लेस करे। आईसीसी का ये भी प्लान था कि टीम में जैसे अफगानिस्तान है, आयरलैंड है, नेपाल भी है, इनको टेस्ट स्टेटस दे दिया जाए लेकिन इनको दूसरे टायर में रखा जाए। पैसे उनके पास है नहीं, तो उनका प्लान ये था कि जो प्रॉफिट्स ओवरसीज राइट्स के टेलीविजन से बनते हैं इंडिविजुअल नेशंस के, उसको एक पूल में डालकर वो इन शेयर किया जाए इन टीमों के साथ। लेकिन बीसीसीआई को लगा कि वो क्यों शेयर करें, और उनका ये भी मानना है कि इससे ये लोअर रैंक की टीमों को मदद होगी नहीं।
मामला तब और गर्मा गया जब बीसीसीआई के सदर अनुराग ठाकुर ने शशांक मनोहर पर इल्जाम लगाया कि वो तो तब बीसीसीआई को छोड़ गए जब उसका जहाज डूबने को था।
When board needed Mr. Shashank Manohar as the president, he left the board in the middle of the thing.
पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम है और उसने इस मुद्दे पर हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। प्रदीप मैगजीन कहते हैं कि हिंदुस्तान अपने मर्तबे का ख्याल रखे।
पाकिस्तान ने इंडिया का साथ नहीं दिया, लेकिन एक क्रिकेटिंग लॉजिक तो है। पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड की नंबर वन टीम है टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको तो फायदा ही है कि वो टॉप टीम्स के साथ खेले। और जहां तक व्यूअर्स का सवाल है, अगर टॉप टीम्स आपस में खेल रही हो और वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टेक पे हो तो शायद टेस्ट क्रिकेट में लोग ज्यादा रुचि लें। ये कहना कि लोग देखने नहीं आते हैं, लोग तो वेस्ट इंडीज इंडिया का मैच खाली स्टेडियम था तब भी नहीं देखने आ रहे थे। और इंडिया को अगर इतना कंसर्न है जो लोअर रैंक की टीमें हैं, तो इंडिया कौन सा बांग्लादेश के साथ कितने टेस्ट खेलता है, क्या वो अफगानिस्तान के साथ सीरीज करेगा? तो इंडिया को सोचना चाहिए था, ना कि एक ट्रेड यूनियन की तरह कि आप तो धमका रहे हैं कि देखिए हम आईसीसी चैंपियनशिप में नहीं खेलेंगे, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो हिंदुस्तान को एक क्रिकेटिंग का सुपर पावर है, सब पैसा इंडिया से आता है, तो इंडिया का बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रिकेट की भलाई को देखे, ना कि सिर्फ अपने ही प्रॉफिट्स को देखते रहे।
क्रिकेट में कारकर्दगी की अहमियत अपनी जगह, लेकिन किस्मत का अमल दखल भी कम नहीं। किस्मत मेहरबान तो खिलाड़ी पर टेस्ट क्रिकेट के दरवाजे खुल जाते हैं, और अगर किस्मत ना मेहरबान तो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के इंतहाई करीब आकर भी उसे खेले बगैर रह जाते हैं। जरा सोचिए उस खिलाड़ी की क्या हालत होगी जिसे कप्तान मैच से एक रात पहले ये बता दे कि वो सुबह टेस्ट मैच खेल रहा है। सुबह भी वो खिलाड़ी टीम में शामिल है, लेकिन टॉस से पहले अचानक उसकी किस्मत बदल जाए और वो टीम से बाहर। जी हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अब्दुल रकीब के साथ यही कुछ भारत के दौरे में हुआ और वो कानपुर टेस्ट मैच खेलते खेलते रह गए। मैंने बेहतर जाना कि ये वाकया खुद अब्दुल रकीब की जबानी आपको सुनाया जाए।
जब कानपुर का टेस्ट आया तो मुझे दो दिन पहले आसिफ इकबाल ने कह दिया कि रकीब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, यू विल मेकिंग ए डेब्यू ऑफ योर। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, हो गई बातचीत। सुबह भी 11 की टीम बन गई, फिर 11 की टीम अनाउंस हो गए कि 11 बन रहे। अच्छा, उस वक्त हुआ ये था कि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, तो उसमें शिवलाल यादव और जोशी ने आउट किए थे काफ़ी, और वो स्पिनिंग विकेट बनी थी, लेकिन क्योंकि इमरान अनफिट हो गए थे तो उन्होंने क्या किया कि विकेट पर जो घास थी वो घास नहीं हटाई। फिर ये दोनों डिस्कस करते रहे, मैं तो खैर तैयारी कर रहा था अपनी, नाम अनाउंस हो गए, चले गए। पता नहीं ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, जब वो टॉस करने जा रहे थे सुनील गावस्कर और आसिफ इकबाल, तो आधे रास्ते तक आसिफ इकबाल गए तो उनके पता नहीं माइंड में क्या आया कि मुझे उन्होंने जल्दी से आवाज़ दी कि रकीब कम हियर। मैंने कहा जी क्या हुआ, खैरियत? कम हियर। मैं चला गया, कहने लगे कि जी वो यू आर नॉट प्लेइंग, आस्क करते शाम टू गेट रेडी और गिव मी ए पेन। मैं भाग के गया हूँ, पेन लाया हूँ, उन्होंने वहीं पे मेरा नाम काटा है। और चूंकि उस जमाने में कोई मैच रेफरी वगैरह तो होते नहीं थे, वो टॉस हो गया। और फिर मेरा काम यह था कि चूंकि एहतशाम 13 में भी नहीं थे और जो आपको पता है वो फील्डर अच्छे नहीं थे, तो अपने स्पाइस भी नहीं लेके नहीं गए थे, तो मैं उन्हीं के स्पाइस लेने, चूंकि वो मेरे रूममेट थे, मैं होटल गया हूँ, उनके स्पाइस वगैरह लेके आया हूँ, और फिर वो क्या नाम है वो मैच खेले। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कलकत्ता में टेस्ट होना था, तो ऑलमोस्ट आई वॉज सर्टन कि मुझे भी आसिफ इकबाल डेब्यू करा देंगे। लेकिन मैच से दो दिन पहले मैं नेट प्रैक्टिस हो रही थी, तो बस मैं अपनी नेट गेंद की, मैं वसीम राजा को गेंद कर रहा था, वसीम राजा ने स्ट्रेट ड्राइव जो मारी, तो मैंने जब गेंद को ग्रिप किया, पकड़ा उसको, तो मेरा फट गया अंगूठा और 7 स्टिचेस आ गए उसमें। तो वो भी एक चांस अगर बनता तो बन सकता था, लेकिन नहीं बना, तो ठीक है नहीं बना, अब क्या कह सकते, नसीब में नहीं था, तो अब यू कांट फाइट विद योर डेस्टिनी।
अब्दुल रकीब से मैंने पूछा कि इस दौरे से पहले 1978 के दौरा इंग्लैंड में भी तो आप शामिल होते होते रह गए थे, वो क्या था?
1978 में मैंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम किया 92 आउट किए थे 13 मैचेस में और इंतखाब आलम का रिकॉर्ड तोड़ा। तो उस साल मैं इंग्लैंड जानी थी टीम को, तो इंग्लैंड में नई मेहमत चले गए और मैं रह गया। अब खैर अच्छा नहीं लगता किसी के पीछे बैक बैटिंग हो जाती, लेकिन उस वक्त सिलेक्शन मेरे हिसाब से गलत था। या तो आप ना ले जाते किसी को दूसरा स्पिनर, अगर आप ले गए थे तो मेरा ही चांस बनता था।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट सुल्तान महमूद की खबरों के साथ सबा नाज।
पैरालंपिक्स में चीन ने अपनी बढ़तरी बरकरार रखी है। तमगों की दौड़ में बर्तानिया दूसरे और यूक्रेन तीसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने आज दिल्ली में सैरोजा मैच से अपने दौरे भारत का आगाज कर दिया है। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान पहला टेस्ट मैच 22 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। इंग्लैंड के क्रिकेट शायकीन के ग्रुप बार्मी आर्मी ने सिक्योरिटी के खदशात के सबब बांग्लादेश न जाने का फैसला किया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का कहना है कि वो घुटने के ऑपरेशन के बाद मुकम्मल सेहतयाब होकर दिसंबर में दोबारा खेल शुरू करने का इरादा रखती हैं।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।